goes for the free kick. It's in! Hat-trick Cristiano Ronaldo!
अर्जेंटीना को कोई मिरेकल ही बचाएगा इस वर्ल्ड कप में। अब तो
ये टूर्नामेंट ओलंपिक वर्ल्ड कप एशियन गेम्स से ज्यादा मुश्किल टूर्नामेंट है,
और इस टूर्नामेंट को इंट्रोड्यूस भी कराया था और ये पहचाना जाता था पाकिस्तान के नाम से।
गुड मॉर्निंग, स्पीकिंग टू यू फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम इन कराची ऑन द सेकंड डे ऑफ द टेस्ट मैच।
फुटबॉल वर्ल्ड कप, रोनाल्डो अपने उरूज पर, लेकिन लियोनेल मेसी के लिए भयानक ख्वाब। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म, और क्रिकेट कमेंट्री की एक खूबसूरत आवाज खामोश हो गई। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। फुटबॉल वर्ल्ड कप मेजबान रूस, यूरोगोए, फ्रांस और क्रोएशिया को नॉकआउट मरहले में पहुंचाता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मराकश, सऊदी अरब, मिस्र और पेरू की कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि अर्जेंटाइन की पोजीशन भी खतरे में है।
Argentina simply stopped because they know it's the end of time for them.
जी हाँ, अर्जेंटाइन जिसने पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन आइसलैंड से बराबर खेलने के बाद क्रोएशिया के हाथों शिकस्त ने अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरे से दोचार कर दिया है। मैंने तजियाकार रेहानुल हक से पूछा कि अर्जेंटाइन इतना बुरा खेलेगा, क्या इसकी तवक्को की जा सकती थी?
मैं पिछले 10-12 साल से कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि अर्जेंटीना आखिर मेसी से चाहते क्या है, क्योंकि अगर आप बार्सिलोना में देखें तो मेसी के ऊपर रिलायंस रही है, लेकिन ओवर रिलायंस कभी नहीं रही। उनके इर्द गिर्द इनिएस्टा, चावी, जब वो शुरू में आते ऑनरी, रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर्स, एटो जैसे प्लेयर्स उनके साथ खेलते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारा जो गोल स्कोरिंग है वो भी मेसी करे, प्ले मेकिंग भी मेसी करे। तो अर्जेंटीना की मुझे समझ नहीं आती, जो मैनेजर आता है वो क्या करता है कि जी मेसी के ऊपर रिलायंस हो गई है, आपके पास इतने हाई क्वालिटी प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनको आप या स्क्वाड में ही रखते हैं या टीम के साथ नहीं लेके जाते, आपके पास हैं लेकिन आप फिर भी उसके बाद बोका जूनियर्स के प्लेयर्स, इंडिपेंडेंटे के प्लेयर्स खिलाते हैं। वो अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन वो इस इंटेंसिटी की फुटबॉल खेले हुए हैं, क्या वहां पर वो इंटेंसिटी ऑफ फुटबॉल होती है, वो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन होती है, ये बड़ा डाउटफुल है। मुझे जो दुख है वो ये है कि अक्सर बात होती है कि डिबाला, मेसी, इग्वाइन, अग्वेरो इकट्ठे एक टीम में नहीं खेल सकते। मेरे ख्याल में अगर आपने सिस्टम करना हो, अब तो मजबूरी बन गई है, आपको ये खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेसी को थोड़ा क्लियर रोल दें, उससे भी बात करें, क्योंकि मेसी खुद भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस ले रहे हैं। आपको ऐसे लगता है पूरी अर्जेंटीना का प्रेशर उनके ऊपर है, पूरी प्रेस का प्रेशर उनके ऊपर है, पूरी कॉम का प्रेशर उनके ऊपर है, और वो अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। इतनी ओवर रिलायंस एक बंदे के ऊपर आप कभी नहीं कर सकते। इवन जब मैराडोना ने 86वें वर्ल्ड कप जिताया था तो उनके इर्द गिर्द भी ऐसे प्लेयर्स थे जो गोल करते थे। अभी अर्जेंटीना आइडेंटिटी क्राइसिस है, पिछले को 10-12 साल से गुजर है, दोबारा वो मैराडोना का एक शैडो है जिससे वो बाहर ही नहीं निकलते कि मैराडोना ने हमें अकेले 86 का वर्ल्ड कप जिता दिया था। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो आप अर्जेंटीना को कोई मिरेकल ही बचाएगा इस वर्ल्ड कप में। अब तो
रेहानुल हक से मेरा अगला सवाल अब तक के मैचों में दीगर टीमों की कारकर्दगी से मुतालिक था।
काफी क्वेश्चन मार्क है, अभी तक कोई कन्विंसिंग एज सच परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं आई फ्रॉम वन ऑफ द बिग टीम्स कि आप कह सकें कि उन्होंने ये क्लेम किया कि जी वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। काफी ज्यादा अपसेट्स भी हुए हैं, लेकिन इसके आपको ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा जो अपोजिशन टीम्स हैं, क्वालिटी ऑफ अपोजिशन टीम्स इस वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी है। एक दो टीमें अगर आप निकाल दें, पनामा, सऊदी अरेबिया को अगर आप निकाल भी दें, बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो हाई क्वालिटी टीम्स हैं, एंड ऑन देयर डे वो किसी भी टीम को हरा सकती हैं। एक तो ये बात हो गई, तो जो वो बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि वन ऑफ द मोस्ट ओपन वर्ल्ड कप्स है, तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री का सबसे ओपन वर्ल्ड कप ये है, क्योंकि सारी टीम्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा है और कोई स्टैंड आउट फेवरेट नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। जर्मनी अपना पहला मैच हारा और काफी ज्यादा इशूज नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उनके मैनेजर हैं योकिम लव, अगर आपको 2014 में भी याद हो तो वो स्टार्ट उनका टूर्नामेंट का, हालांकि वो मैचेस जीते थे, इतना कोई खास नहीं रहा था। एक दफा उनको अपनी स्टार्टिंग लेवल मिल जाए तो आप जर्मनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। प्रॉब्लम उनको क्या आ रही है वो ये है कि 2014 के वर्ल्ड कप में और यूरोस में जो मेन उनकी डिपेंडेंसी थी वो बेस्टन श्वाइनस्टाइगर और सैमी कदीरा की मिडफील्ड पेयरिंग पे थी।
रेहानुल हक से मैंने पूछा कि रोनाल्डो पिछले 3 वर्ल्ड कप में 3 गोल ही कर पाए थे, लेकिन इस बार तो उन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आता।
3 वर्ल्ड कप मिला के कुछ 70 शॉट्स थी और 3 गोल थे। इस वर्ल्ड कप में उनकी 10 या 11 शॉट्स हैं तो ऑलरेडी 4 गोल कर चुके हैं। वो रनिंग ऑफ द बॉल कम कर दी है, ज्यादातर वो बॉक्स ऑक्यूपाई करते हैं, गोल स्कोरिंग पोजीशन में ज्यादा आते हैं। अब उनका आप वो नहीं देखेंगे कि वो पीछे से बॉल ड्रिबल करके आगे लेके आएंगे, तो रोनाल्डो की बहुत ज्यादा जो है वो एक एफिशिएंट गेम हो चुकी हुई है, और उसमें इसका ये मतलब नहीं कि वो लेस इफेक्टिव हो गए, इसका ये मतलब वो गोल ज्यादा कर रहे हैं। वो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर भी बन चुके हैं, अली दाई सिर्फ उनसे आगे हैं। तो उनका तो जब बिग स्टेज आती है तो रोनाल्डो को भी पता है कि उसने यूरो में भी अब परफॉर्म कर लिया, उसकी टीम यूरो भी जीत गई, वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज थी जो उसकी बची थी, और उसका जो कॉम्पिटिशन है जो कि उसके दिमाग में भी है कि ही वॉन्ट्स टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो उसके लिए ये एक बहुत बिग स्टेज है, तो वो दिखा रहा है कि वो कितना हंग्री है।
इस वर्ल्ड कप में पनामा और आइसलैंड दो ऐसे ममालिक हैं जिन्हें पहली मर्तबा फुटबॉल के आलमी मुकाबले में शिरकत का मौका मिला है। आइसलैंड तो खास तौर पर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है, लेकिन कैसे? सुनिए शफीना की जामई से।
जरा सोचें, एक मुल्क जिसकी कुल आबादी 3.5 लाख भी ना हो, यानी दुनिया के कई शहरों से भी कम आबादी हो, और वो अगर आलमी कप की धाई धूम में बाजे गाजे के साथ शामिल हो जाए तो क्या दुनिया हैरान ना होगी? जी हाँ, होगी। ये मुल्क है आइसलैंड, जो वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बना है आबादी के एतबार से। आइसलैंड न सिर्फ वर्ल्ड कप में पहली बार शरीक हुआ है, बल्कि उसने लियोनेल मेसी की पेनल्टी को नाकाम बनाते हुए अर्जेंटीना के खिलाफ अपना पहला मैच बराबर कर दिया। आइसलैंड की फुटबॉल की कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले कि ये जिक्र हो कि आइसलैंड ने वर्ल्ड कप तक रसाई कैसे हासिल की, आइसलैंड के फुटबॉल टीम मैनेजर हाल ग्रिमसन का जिक्र हो जाए, जो पेशे के एतबार से कोई डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, बल्कि डेंटिस्ट हैं। आ गए ना 32 बाहर? जी हाँ, डेंटिस्ट। और 2 साल पहले जब उन्हें फुल टाइम मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसके बाद भी वो पार्ट टाइम डेंटिस्ट्री से बाज ना आए, खिदमत अंजाम देते रहे। आइसलैंड के मौसमी हालात के पेश नज़र वहाँ की फुटबॉल बिल्डिंग फुटबॉल हाउसेस पर कायम हैं, जिनकी तादाद 11 है, जिनमें बाकायदा मैदान और दूसरी ज़रूरी सहूलतें मौजूद हैं। हालांकि पूरे आइसलैंड में सिर्फ 21,000 के करीब रजिस्टर्ड फुटबॉल खेलने वाले हैं। आइसलैंड 4 साल पहले वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब हो जाता, लेकिन क्रोएशिया ने उसके दांत खट्टे कर दिए थे। यूरो 2016 में आइसलैंड ने क्वालिफाइंग राउंड में हॉलैंड को 2 बार हराने के बाद फाइनल राउंड में जगह बनाई, जहां उसने इंग्लैंड को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त की सूरत में जबरदस्त झटका दिया। तहम क्वार्टर फाइनल में उसे मेजबान फ्रांस ने वैसा ही झटका दे दिया। इस आलमी कप में आने के लिए आइसलैंड ने क्वालिफाइंग राउंड में यूक्रेन, तुर्की और कोसोवो को भी मात दी है। आज से सिर्फ 6 साल पहले तक आइसलैंड की फीफा की आलमी रैंकिंग में 131वीं पोजीशन थी, लेकिन अब रूस के आलमी कप में दुनिया की 22वें नंबर की टीम की हैसियत से मौजूद है।
सैंतीसवीं हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कल से हॉलैंड में शुरू हो रही है, लेकिन 1978 में शुरू होने वाले इस बैन अलाक्वामी इवेंट का ये आखिरी एडिशन है। मतलब ये कि इसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद नहीं हुआ करेगी। पाकिस्तान ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। 1978 में जब पहली मरतबा जीती तो कप्तान इस्लाहुद्दीन थे। मैंने इस्लाहुद्दीन से पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की तवील वाबस्तगी, लेकिन अब ये टूर्नामेंट खत्म, क्या कहेंगे?
FIH को चाहिए कि इस टूर्नामेंट को हरगिज़ ख़त्म ना करें, बल्कि इस टूर्नामेंट को जारी रखें। और ये पाकिस्तान की कोशिशों के वजह से टूर्नामेंट क़याम अमल में आया और उसके बाद सालों ये टूर्नामेंट होता रहा है, क्योंकि ये चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स से ज़्यादा मुश्किल टूर्नामेंट है। और इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सारी टॉप की टीमें खेलती हैं। एक बार इनको फिर सोचना चाहिए, बजाय इसके कि नए टूर्नामेंट और लेकर आएँ, बजाय पुराने टूर्नामेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं, पुराने टूर्नामेंट्स को भी जारी रखना चाहिए। और इसके अलावा वो जितने मर्जी चाहे टूर्नामेंट ले आएँ, वो ला सकते हैं, करवा सकते हैं। तो मेरी उनसे यही अपील होगी कि इस टूर्नामेंट को हरगिज़ ख़त्म ना करें।
पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1994 में चैंपियंस ट्रॉफी शहबाज अहमद की क़यादत में जीती थी। मैंने शहबाज अहमद से पूछा कि क्या यादें हैं चैंपियंस ट्रॉफी की।
यादें मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इसलिए भी हैं कि मेरा ख्याल है मैं सबसे ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी खेला हूँ इस मुल्क के लिए। 86 चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें मैं डिस्कवर हुआ, जिसमें मेरा करियर स्टार्ट हुआ, कराची में जो मैं खेला हूँ मुझे आज भी याद है, जिसका गोल मैंने हसन सरदार को पास दिया कराया।
शहबाज अहमद से मैंने पूछा कि एक ऐसा टूर्नामेंट जो पाकिस्तान ने शुरू किया अब खत्म हो रहा है, क्या ये अफसोस की बात नहीं?
इनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था इसको खत्म करने से पहले, क्योंकि ये एयर मार्शल नूर खान ने ट्रॉफी भी दी थी और इस टूर्नामेंट को इंट्रोड्यूस भी कराया था और ये पहचाना जाता था पाकिस्तान के नाम से।
पाकिस्तान के अव्वलीन क्रिकेट कमेंटेटर्स में से एक जमशेद मारकर गुज़िश्ता रोज कराची में 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के इब्तदाई दौर में उमर कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल थी। जमशेद मारकर 19 मुल्कों में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। कुछ अरसा पहले मैंने जमशेद मारकर का इंटरव्यू किया था जो खेल के मैदान से में भी नशर हुआ था। आज पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करने का वक्त।
गुड मॉर्निंग, स्पीकिंग टू यू from the National Stadium in Karachi on the second day of the Test match.
Jamshed Markar ne ek cricket commentary kaise shuru ki thi aur ye safar unke liye kaisa raha?
Yahan pe Radio Pakistan jab shuru hua tha to wahan pe director general the Rashid Ahmed, Rashiduddin Ahmed sahab. To wo mere ustad the school mein. Main Dehradun school mein tha, Dun school mein. جب پاکستان شروع ہوا یہاں پہ اور کرکٹ شروع ہوا اور کامنٹری اس وقت تو کچھ کمزور تھی کیونکہ گورے تھے. عمر قریشی نے شروع کیا تھا ان کے ساتھ, تو رشید الدین نے مجھے فون کیا کہ بھائی تم تو اسکول میں کرکٹ کھیلتے تھے. میں نے کہا بہت کمزور, آئی واز ناٹ اے گڈ کرکٹر ایٹ آل, اور پھر کالج میں بھی میں کچھ خاص نہیں کامیاب تو نہیں ہوئے. لیکن اس نے کہا کہ وی آر لکنگ فار سم باڈی, تو آپ یہ ٹرائی کریں.
جمشید مارکر کو ایک بیٹس مین کے آؤٹ ہونے سے بہت ڈر لگتا تھا, وہ کون تھے؟
حنیف کی جو بیٹنگ, جب وہ جب ہم تو کانپتے تھے کہ یار اگر اس کا وکٹ گیا تو پاکستان کی طرح. امتیاز گریٹ فیوریٹ آف مائن, مقصود کے بیٹنگ, وہ جو چھکا مارتا تھا.
جمشید مارکر نے 11 سال کرکٹ کامنٹری کی, تو کیا انہوں نے کبھی اپنی آواز محفوظ کر کے رکھی؟
جی نہیں, ریڈیو پاکستان کے پاس تھی کچھ, اور میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی کہ کاپی ملے, ان کے نہیں ملے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.